पृष्ठ संख्या 497, अध्याय 20, निर्धनों का कल्याण, वेश सूत्री कार्यक्रम। वेलफेयर ऑफ पुअर एलिविंग पॉवर्टी थ्रू 20-पॉइंट प्रोग्राम। हमारे देश में निर्धनता के आकार का आभास इस तथ्य से हो सकता है कि 1983-84 के अस्थायी अनुमानों के अनुसार भारत में 27.10 करोड़ गरीब व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे थे। इस जनसंख्या में 22.15 करोड़ व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में एवं 4.95 करोड़ व्यक्ति नगरों में थे। इस प्रकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति जनसंख्या का 37.4% है। बिहार में 3.65 करोड़ व्यक्ति, जो इसकी कुल जनसंख्या का 49.5% है, गरीबी रेखा से नीचे हैं। मध्य प्रदेश में 2.54 करोड़ की इसकी कुल जनसंख्या का 46.2% है, व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे हैं। उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। इसकी 45.3% जनसंख्या अथवा 5.30 करोड़ व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे हैं। मणिपुर में सबसे कम व्यक्ति 12.3% तथा 1.9 लाख व्यक्ति इस श्रेणी के हैं। गरीबी रेखा से अर्थ है 49.9 रुपये मासिक आय प्रति व्यक्ति 1973-74 मूल्यों पर। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कैलोरी के शब्दों में 2400 कैलोरी के समकक्ष है तथा नगरों में प्रति व्यक्ति 56.14 रुपये मासिक आय कैलोरी में 2100 प्रति व्यक्ति है। निर्धनता उन्मूलन भारतीय योजना प्रक्रिया का प्रमुख अंग रहा है। इस उद्देश्य से 6वीं पंचवर्षीय योजना में इस विभीषिका से निपटने के लिए 2 शिक्षा आधारित रणनीति तैयार की गई थी। एक ओर कृषि के विकास पर बल दिया गया, क्योंकि इससे ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में प्रगति उत्पन्न होनी थी। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन प्रोग्राम का विस्तार करने की योजना बनाई गई। इस उपागम के संदर्भ में 7वीं पंचवर्षीय योजना में कृषक बृहद विकास तथा निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार जन्य प्रोग्रामों पर बेसूत्री कार्यक्रम के रूप में बल दिया गया। बेसूत्री कार्यक्रम का उद्भव। बेसूत्री कार्यक्रम गरीबी हटाओ प्रोग्राम के रूप में समाज के कमजोर वर्गों की दशा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 1975 को आरंभ किया गया था। 14 जनवरी 1982 को संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की गई। संशोधन प्रोग्राम 1982-83 से चालू है। श्री राजीव गांधी के मार्गदर्शन में तैयार किए गए नए बेसूत्री कार्यक्रम को संसद के दोनों सदनों में प्रोग्राम क्रियान्वित मंत्री द्वारा 20 अगस्त 1986 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रोग्राम की 1975 एवं 1982 के बेसूत्री कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर पुनः संरचना की गई थी। पृष्ठ संख्या 498। इस नए प्रोग्राम में पुराने प्रोग्रामों के कुछ सूत्रों को निकाल दिया गया है, जबकि गरीबी से प्रत्यक्ष संबंधित कुछ बिंदुओं को सम्मिलित कर लिया गया है, जिनका गरीबी उन्मूलन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इस कार्यक्रम के क्षेत्र को व्यापक बनाया गया है एवं इसमें सामाजिक हित के अनेक प्रमुख क्षेत्रों यथा शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं, परिवार नियोजन, शिक्षा प्रसार, महिलाओं के लिए समानता, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को न्याय, युवाओं के लिए नए अवसर, समाज के अलाभान्वित वर्गों को आवास, झुग्गी झोपड़ियों की बेहतरी, पर्यावरण संरक्षण आदि को सम्मिलित किया गया है। गरीबी उन्मूलन के अतिरिक्त अन्य लक्षित प्रोग्राम हैं कृषि उपज एवं उत्पादकता की वृद्धि, आय की असमानताओं को दूर करना, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं की समाप्ति तथा सामान्य रूप से जीवन स्तर को उन्नत करना। यह प्रोग्राम केवल सरकारी इरादे की घोषणा मांग नहीं है, अपितु निर्धनों की मुक्ति का चार्टर है। प्रोग्राम के विभिन्न मदों के लिए परिव्यय अलग से और विशिष्ट रूप से नियत नहीं हैं, परंतु इन्हें राज्यों एवं प्रदेशों के संदर्भित या जनागत शीर्षकों तथा संबंधित केंद्रों मंत्रालयों की योजनाओं से प्राप्त किया जाता है। प्रोग्राम के अधीन विभिन्न स्कीमों की वित्त व्यवस्था से आर्थिक नियोजन सामान्य रूप से एवं निर्धनता उन्मूलन प्रोग्राम के विशिष्ट रूप से क्षेत्रों में केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य घनिष्ठ सहभागिता प्रकट होती है। 2 सूत्री कार्यक्रम राज्य सरकारों एवं संघ प्रदेशों एवं केंद्रीय मंत्रालयों की योजना का अनिवार्य मात्र है। कुछ प्रोग्राम यथा LREGP एवं परिवार कल्याण प्रोग्राम पूर्णतया केंद्रीय प्रोग्राम हैं। अन्य प्रोग्राम यथा IRDP, NREP, बॉन्डेड लेबर रिहैबिलेशन केंद्र एवं राज्य सरकारों के संयुक्त प्रोग्राम हैं, जिनका व्यय 50:50 के अनुपात में वहन किया जाता है। 2 सूत्री प्रोग्राम के अधीन 1982-83 के परिव्यय निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। वर्ष कुल योजना परिव्यय 2 सूत्री प्रोग्राम परिव्यय 1,00,000,000 1982-83 में 21,082 8,439 40%, 1983-84 25,480 10,019 29.3%, 1984-85 30,169 11,921 39.5%, 1985-86 32,239 13,118 40.7%, 1986-87 39,052 16,041%। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि परिव्यय बढ़ता जा रहा है, जो 1986-87 में कुल योजना परिव्यय का 41% था। 7वीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय 1,80,000 करोड़ से 2 सूत्री प्रोग्राम के लिए 60,500 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया था, जो कुल प्रोग्राम का 36.6% है। कुल केंद्रीय परिव्यय में 2 सूत्री प्रोग्राम के लिए 22.6%, राज्यों अथवा संघ प्रदेशों के परिव्यय में 46.1% भाग है। 1987-88 के लिए कुल परिव्यय 44,698 करोड़ रुपए है, जिनमें से 2 सूत्री प्रोग्राम के लिए 13,597 करोड़ रुपए अर्थात 30.4% है। पृष्ठ संख्या 499 कार्यक्रम का प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोग्राम। 2 सूत्री कार्यक्रम का प्रशासन कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के प्रबोधन प्रभाग का दायित्व है। इसी मंत्रालय की स्थापना सितंबर 1985 में हुई थी। इससे पूर्व 2 सूत्री कार्यक्रम प्रभाग योजना आयोग में स्थित था। इस मंत्रालय का अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री है, जिसकी सहायता के लिए एक राज्य मंत्री है। सचिवालय स्तर पर एक सचिव, इसका अध्यक्ष, एक अतिरिक्त सचिव, 2 संयुक्त सचिव, 1 उप सचिव, 5 परामर्शदाता तथा अन्य सहायक स्टाफ हैं। 2 सूत्री कार्यक्रम प्रबोधन प्रभाग के अतिरिक्त मंत्रालय के 3 अन्य प्रभाग हैं, अर्थात आधारिक संरचना प्रबोधन प्रभाग, परियोजना प्रबोधन प्रभाग एवं प्रशासकीय समर्थन प्रभाग। मंत्रालय की संरचना निम्नलिखित चार्ट में दर्शाई गई है। प्रोग्राम क्रियान्वयन मंत्रालय का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मंत्री, राज्य मंत्री, सचिव, अतिरिक्त सचिव, सचिव के अंतर्गत संयुक्त सचिव, अभियंताओं, व्यावसायिक प्रबंधकों, अर्थशास्त्रियों एवं प्रशासकों की बहुआयामी टीम, इसके अंतर्गत संरचना प्रबोधन प्रभाग, परियोजना प्रबोधन प्रभाग, बेसूत्री कार्यक्रम प्रबोधन प्रभाग, प्रशासकीय समर्थन प्रभाग, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम प्रबोधन प्रभाग। निर्धनता उन्मूलन प्रोग्राम प्रभाग का समन्वय बेसूत्री प्रोग्राम के प्रबोधन से है। इसमें सम्मिलित है आयजन्य निर्धनता विरोधी प्रोग्राम, परिसंपत्ति उत्पन्न करना एवं दरिद्रों के जीवन स्तर को सुधारना, अनुसूचित जातियों जनजातियों का कल्याण, न्यूनतम आवश्यक प्रोग्राम यथा ग्रामीण जल आपूर्ति, आवास स्थान, आवास निर्माण सहायता, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा, पोषाहार, प्रौढ़ शिक्षा, झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वालों की स्थिति को सुधारना तथा उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने संबंधी प्रोग्राम। बेसूत्री कार्यक्रम 1986 की घोषणा 20/8/1986 को हुई थी। इसका कार्यान्वयन एवं प्रबोधन 1/4/1987 से आरंभ हुआ। वार्षिक योजना 1987-88 के साथ भारत सरकार ने अपने एक प्रस्ताव 12 मई 1987 द्वारा परामर्शीय परिषद की स्थापना भी की, जिसका कार्य था मंत्रालय को बेसूत्री प्रोग्राम के क्रियान्वयन के बारे में परामर्श देना। पृष्ठ संख्या 500। परंतु किसी प्रोग्राम की सफलता इसके प्रभावी नियंत्रण पर निर्भर करती है। बेसूत्री प्रोग्राम की सहायता भी इसको दृढ़ एवं समर्पित भाव से क्रियान्वित किए जाने पर निर्भर करती है। विभिन्न राज्यों में प्रबोधन विधियों का विकास योजनागत परियोजनाओं एवं स्कीमों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए किया गया है। समाज के जिन क्षेत्रों को सुधारात्मक कार्यवाही का आवश्यक अंग माना जाता है, उन क्षेत्रों की पहचान करना प्रभावी प्रबोधन का एक प्रमुख कार्य है। बेसूत्री प्रोग्राम के प्रबोधन का दायित्व तो राज्य सरकारों एवं संघ प्रदेशों का है। प्रोग्राम क्रियान्वयन मंत्रालय का कार्य है। प्रभावी प्रबोधन व्यवस्था का संस्थायीकरण, जो न केवल प्रोग्राम के प्रभावी क्रियान्वयन को उत्प्रेरित करेगा अपितु मूल क्षेत्रों में विश्वसनीय सूचना को शीघ्र संचारित करेगा, ताकि प्रबोधन अभिकरण इन संकेतों की आवश्यकता व्याख्या करके तुरंत एवं सृजनात्मक ढंग से हस्तक्षेप करे। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मंत्रालय सदैव राज्य सरकारों एवं संघ प्रदेशों से निरंतर संपर्क बनाए रखता है तथा समय समय पर उनके साथ बैठकें करता है। निस्संदेह निरंतर प्रबोधन एवं पुनरावलोकन किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक हैं। मंत्रालय ने सभी संबंधित व्यक्तियों एवं एजेंसियों के मार्गदर्शन हेतु एक व्यापक प्रबोधन नियम पुस्तिका तैयार की है। प्रोग्राम क्रियान्वयन मंत्रालय का प्रमुख दायित्व राज्य सरकारों, संघ प्रदेशों एवं केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों द्वारा प्रोग्राम के क्रियान्वयन पर निकट निगरानी रखने तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही आरंभ करना है। यह कार्य वार्षिक, त्रैमासिक एवं मासिक आधार पर भौतिक लक्ष्यों के निर्धारण से आरंभ होता है। बेसूत्री प्रोग्राम 1986 के 51 उपबिंदु हैं, जिनमें से उनके पुनः एक से आर्थिक बिंदु हैं। मंत्रालय सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों के साथ पूर्ण विस्तृत विचार विमर्श उपरांत प्रत्येक बिंदु के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं की सूची इसके प्रबोधन का समय काल तैयार करता है। मासिक कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रबोधन समीक्षा पद्धति। आयत इनपुट राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त मासिक रिपोर्ट राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त त्रैमासिक रिपोर्ट। प्रक्रिया प्रोसेसिंग मासिक प्रगति रिपोर्ट का संग्रहीकरण तथा विश्लेषण योजना आयोग से विचार विमर्श कर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट का संग्रहीकरण एवं विश्लेषण। निर्गत आउटपुट मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रधानमंत्री के लिए, संपुटी कैप्सूल रिपोर्ट कार्यकारी सारांश सहित त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट है। अनुसरण फॉलो अप, प्रधानमंत्री मंत्रियों द्वारा मुख्यमंत्रियों को भेजे गए पत्र, मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श, राज्य मुख्यालय एवं क्षेत्रों में जनसंपर्क, मुख्य सचिवों विकास आयुक्तों से विचार विमर्श, केंद्रीय मंत्रालयों से विचार विमर्श, बड़े मसलों को प्रधानमंत्री कार्यालय एवं काबीना मंत्रालय में ध्यान में लाना। पृष्ठ संख्या 501। मंत्रालय द्वारा प्रोग्राम क्रियान्वयन बारे सूचना एकत्रित करने के दो साधन हैं, रोमन का नंबर एक मासिक प्रगति रिपोर्ट एवं रोमन का नंबर दो त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट। मासिक प्रगति रिपोर्ट में 29 विषयों बारे में निर्धारित लक्ष्यों की प्रत्येक मास प्राप्ति का विवरण होता है। ये बिंदु ऐसे हैं जिनका प्राप्तियों का मासिक आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है, यथा समेकित विकास योजना IRDP, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार प्रोग्राम अधीन जनित रोजगार NREP, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी प्रोग्राम RLEGP, लघु उद्योग इकाइयां, फालतू भूमिका वितरण, बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास, पेयजल आपूर्ति, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बाल टीकाकरण, परिवार नियोजन, आंगनबाड़ियां, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की आवास स्थान आवंटित, निर्माण सहायता, इंदिरा आवास योजना, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवंटित आवास, निम्न आय श्रेणी के आवास, गंदी बस्तियों की बेहतरीकरण, वृक्षारोपण, उचित मूल्य की दुकानें, ग्रामीण विद्युतीकरण, नलकूपों की ऊर्जा, उन्नत चूल्हे एवं बायोगैस संयंत्र। जबकि मासिक प्रगति रिपोर्ट के मासवार उपलब्धि का पता लग जाता है, त्रैमासिक रिपोर्ट द्वारा उपलब्धियों की व्यापक स्तर पर निंदनीय जांच हो जाती है, जिसमें मूल्यांकन उपरांत प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव भी सम्मिलित होते हैं। प्रोग्राम के प्रत्येक मद के निष्पादन मूल्यांकन को अति उत्तम, उत्तम एवं निकृष्ट क्रमशः 90% एवं उच्च 80% से 90% तक तथा 80% से नीचे के आधार पर श्रेणीकृत किया जाता है। राज्यों की उपलब्धियों को 4 श्रेणियों में ABC एवं D में भी वर्गीकृत किया जाता है। ए श्रेणी में भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति 90% तथा इससे ऊपर होनी चाहिए। श्रेणी बी एवं सी में उपलब्धि अखिल भारतीय स्तर से ऊपर तथा नीचे क्रमशः होती है। श्रेणी डी में उपलब्धि शून्य होती है। राज्यों का श्रेणीकरण उपरोक्त वर्णित 20 चयित मदों के बारे में उपलब्धि के आधार पर किया जाता है। पिछले 3 वर्षों में पंजाब 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में प्रथम रहा है। समेकित विकास योजना प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार प्रोग्राम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार जन्य प्रोग्राम, लघु उद्योग प्रोग्राम, टीकाकरण प्रोग्राम, अनुसूचित जातियों को न्याय, वन मत्स्य पालन एवं बागवानी में श्री SS रे तत्कालीन राज्यपाल के अनुसार पंजाब ने सराहनीय सफलता प्राप्त की है। उन्होंने 9 जनवरी 1989 को विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति का पुनरावलोकन करने हेतु बुलाई गई बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अन्य विभागों का भी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तथा राज्य का प्रथम स्थान बनाए रखने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। सभी राज्यों, संघ प्रदेशों एवं संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों में प्रबोधन संयंत्र की स्थापना की गई है। इसके लिए केंद्रीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। राज्यों, संघ प्रदेशों के उच्च स्तरीय क्रियान्वयन एवं प्रबोधन समितियां भी मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के अधीन राज्य मुख्यालय पर स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समितियां स्थापित की गई हैं, जिनमें संसद सदस्य एवं विधानमंडलों के सदस्य बिना दलीय भेदभाव के एवं अन्य गैर सरकारी जनप्रतिनिधि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों सहित सदस्य होते हैं। यह प्रबोधन समितियों प्रोग्रामों के प्रभावी क्रियान्वयन के मार्ग में बाधाओं को दूर करने में उपाय सुझाती है। पृष्ठ संख्या 502। राज्यों अथवा संघ प्रदेशों में वर्तमान प्रोग्राम प्रबंध संयंत्र निम्न प्रकार हैं। स्तर, क्रियान्वयन अभिकरण, प्रबोधन अभिकरण, परामर्शदात्री समूह। राज्य अथवा संघ प्रदेश, इसमें क्रियान्वयन अभिकरण के अंतर्गत संबंधित विभाग राज्य सरकार तथा संघ प्रदेश का। प्रबोधन अभिकरण के अंतर्गत रोमन का नंबर एक मुख्यमंत्री के स्तर पर संबंधित मंत्रियों एवं विभागाध्यक्षों की बैठक, रोमन का नंबर दो विभागाध्यक्षों सहित मुख्य सचिव स्तर पर बैठक। परामर्शदात्री समूह के अंतर्गत स्वयंसेवी अभिकरणों की परामर्शदात्री समूह कुछ एक राज्यों में। जिला स्तर पर विभागीय जिला अधिकारी ग्रामीण विकास एवं समृद्ध प्रोग्रामों के बारे में DRDA। जिला स्तरीय समिति कुछ एक राज्यों में, इन समितियों में जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट, जिला परिषद अध्यक्ष DRDA, ब्लॉक विकास अधिकारी, संसद सदस्य, विधानमंडल सदस्य, जनप्रतिनिधि, अल्पसंख्यकों के भी सदस्य होते हैं। कुछ एक राज्यों में स्वयंसेवी संगठनों की परामर्शदायी समिति कार्य कर रही हैं। खंड ब्लॉक के अंतर्गत खंड विकास अधिकारी एवं विभागीय स्टाफ। ब्लॉक स्तरीय प्रबोधन समिति विधायक एवं जनप्रतिनिधि, जिनमें अल्पसंख्यकों के भी सम्मिलित होते हैं। पृष्ठ संख्या 503। बीस सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 20-पॉइंट प्रोग्राम। बीस सूत्री कार्यक्रम में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, रोमन का नंबर एक ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन, रोमन का नंबर दो वर्षा आधारित कृषि के सुधार के लिए रणनीति, रोमन का नंबर तीन सिंचाई जल का बेहतर प्रयोग, रोमन का नंबर चार अच्छी फसलें, रोमन का नंबर पाँच भूमि सुधार, रोमन का नंबर छः ग्रामीण श्रमिकों के लिए विशेष प्रोग्राम, रोमन का नंबर सात शुद्ध पेयजल, रोमन का नंबर आठ सबके लिए स्वास्थ्य, रोमन का नंबर नौ दो बच्चों का परिवार नॉर्मल, रोमन का नंबर दस शिक्षा प्रसार, रोमन का नंबर 11 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को न्याय, रोमन का नंबर 12 महिलाओं को समान दर्जा, रोमन का नंबर 13 युवाओं के लिए नए अवसर, रोमन का नंबर 15 लोगों के लिए आवास, रोमन का नंबर 16 गंदी बस्तियों का उद्धार, रोमन का नंबर 17 वानिकी के लिए नए रणनीति पर्यावरण संरक्षण, रोमन का नंबर 18 उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा, रोमन का नंबर 19 देहातों के लिए ऊर्जा तथा रोमन का नंबर 20 एक उत्तरदायी प्रशासन। विभिन्न प्रोग्रामों के क्रियान्वयन को उनके घटकों, लक्ष्यों एवं उपलब्धियों, प्रशासकीय संयंत्र, दोषों एवं बेहतरी हेतु सुझावों के संदर्भ में निम्नलिखित वर्णित किया जाता है। नंबर एक, ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन, अटैक ऑन रूरल पॉवर्टी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के आरंभ में 39% से 1989-90 तक 28.2% का, 1994-95 तक 10% एवं 1990 से 2000 तक 5% करने का लक्ष्य रखा गया। छठी पंचवर्षीय योजना में आरंभ किए गए प्रमुख प्रोग्राम सातवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक गति एवं बल से क्रियान्वित किए जा रहे हैं। नंबर एक, समेकित ग्रामीण विकास योजना इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP प्रोग्राम गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सेक्टरों में स्वरोजगार व्यवसाय करने हेतु प्रोत्साहित करता है एवं सहायता देता है। इस प्रोग्राम के अधीन आयजन्य परिसंपत्ति कार्य पूंजी सहित एकमुश्त सहायता के माध्यम से, जिसमें सब्सिडी एवं संस्थागत ऋण सम्मिलित होता है, प्रदान की जाती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पाए गए दोषों को दूर करने हेतु प्रोग्राम में कुछ संशोधन किए गए। आवंटन के मापदंड के प्रत्येक खंड के लिए समान राशि की अवधारणा के स्थान पर निर्धनता की मात्रा पर आधारित बना दिया गया है। अब गरीबों में से अधिक गरीब को लक्ष्य बनाया गया है, जिसके लिए वार्षिक पारिवारिक आय 4800 रुपये निश्चित की गई है, जो गरीबी रेखा से निर्धारित 6400 रुपये से कम है। लाभ भोक्ताओं की पहचान करने के लिए जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिन व्यक्तियों को छठी पंचवर्षीय योजना में सहायता दी गई थी, परंतु जो गरीबी रेखा को ऐसी सहायता के बाद भी पार नहीं कर रहे हैं, उन्हें पूरक सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुल लाभ भोक्ताओं का 30% महिला वर्ग होना चाहिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 20 मिलियन लाभ भोक्ताओं परिवारों को सहायता पहुंचाना है, जिनमें 50% ऐसे परिवार होंगे जिन्हें पूरक सहायता की आवश्यकता है। पृष्ठ संख्या 504, समेकित ग्रामीण योजना के क्रियान्वयन की प्रगति। छठी योजना के दौरान 1985-86 एवं 1986-87 में निम्नलिखित दर्शाई गई है। छठी योजना उपलब्धि मद 1, लक्ष्य 2, उपलब्धि 3, 1985-86 4, 1986-87 5। रुपये करोड़ में, नंबर 1, कुल परिव्यय 1,500,1766.81, 407.36, 543.83। कुल व्यय 1,500,1661.17, 441.10, 604.37। कुल अवधि ऋण 3,000.00, 3,101.61, 730.15, 997.78। लाभ भोक्ताओं की संख्या लाभ में 150, 165.62, 30.61, 37.47। SC/ST 50, SC/ST 64.3, SC/ST 13.23, SC/ST 16.80, महिला 3.03, महिला 5.67। नंबर 5, कुल निवेश 45.00, 4,762.78, 1,171.25, 1,602.15। नंबर 6, प्रति व्यक्ति सब्सिडी रुपये - 1,003, 1,159, 1,229। प्रति व्यक्ति ऋण - 1,872.72, 2,386.00, 2,667.00। नंबर 8, प्रति व्यक्ति निवेश - 2,875.72, 3,545.00, 3,959.00। प्रोग्राम का समवर्ती मूल्यांकन प्रत्येक मास या ऐच्छिक एवं चक्रवात उदाहरण के आधार पर 36 जिलों के 72 खंडों में 29 ख्याति प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है। इसमें प्रत्येक खंड से 10 नए एवं पुराने लाभभोक्ताओं को चयन किया जाता है। अक्टूबर 1985 सितंबर 1986 की अवधि के लिए किए गए मूल्यांकन से ज्ञात हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर 12% संशोधित गरीबी रेखा 6,400 रुपये को पार कर चुका है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार वारंटी प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटीज प्रोग्राम, मजदूरी प्रोग्राम का लक्ष्य वर्ष के खाली समय के दौरान श्रमिकों को पूरक रोजगार अवसर प्रदान करना, अस्थायी सामुदायिक परिसंपत्ति उत्पन्न करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह प्रोग्राम अन्य विकासीय प्रोग्रामों के साथ संयुक्त रूप में चलता है, क्योंकि रोजगार एवं विकास एक दूसरे को समर्थन प्रदान करते हैं, जिससे समाज में अधिकतम लाभ होता है। अतः इन प्रोग्रामों के अधीन जारी दिशा निर्देशों की व्यवस्था की गई है कि ग्रामीण समुदायों को विकास कार्यों में आरंभ से ही संलग्न किया जाए। यह भी व्यवस्था की गई है कि ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीण आवश्यकताओं की पहचान की जाए तथा ग्राम पंचायतों की प्रोग्रामों के क्रियान्वयन में सहभागी बनाया जाए। रोजगार प्रोग्राम के पीछे मुख्य विचारधारा यह है कि ग्रामीण आधारित संरचना को सशक्त बनाने के लिए अस्थायी परिसंपत्ति की उपज से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शीघ्र विकास होगा और साथ ही रोजगार अवसरों की भी उत्पत्ति होगी। पृष्ठ संख्या 505। NREP, जिसे अक्टूबर 1980 में आरंभ किया गया था, को सातवीं योजना में भी गरीबी उन्मूलन रणनीति को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जारी रखा गया है। इस प्रोग्राम में राज्यों एवं केंद्रों 50:50 के अनुपात में व्यय वहन किया जाता है। इस प्रोग्राम के अधीन स्थानों परिसंपत्ति के निर्माण हेतु सामग्री पर किसी जिले में कुल परियोजना व्यय का 50% तक व्यय किया जा सकता है। विभिन्न परिसंपत्तियां हैं, सामाजिक वानिकी, तालाब, साधारण सिंचाई, भूमि संरक्षण, ग्रामीण सड़कें, सामुदायिक भवन एवं अन्य कार्य छठवीं पंचवर्षीय योजना एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम 3 वर्षों में प्रगति निम्न तालिका में दर्शाई गई है। मद छठी योजना 1985-86, 1986-87, 1987-88। नंबर 1, कुल परिव्यय नगद राशि करोड़ में 1577.40, 577.78, 457.50, 508.34। कुल प्रयोग 1834.25, 531.95, 717.77, 419.59। दिसंबर 1987 तक। नंबर 3, रोजगार उत्पत्ति रोमन का नंबर 1, लक्ष्य 10 लाख, कार्य दिवस 1500 से 2000, 228, 275, 248.7। नंबर 2, उपलब्धि 1775, 316, 395, 216.5, दिसंबर 1987 तक। RLEGP को 15 अगस्त 1983 को 100% केंद्रीय प्रायोजित प्रोग्राम के रूप में आरंभ किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य है प्रोग्राम के अधीन किए गए निवेश के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं दीर्घकालीन रोजगार अवसरों को अधिक से अधिक बढ़ाना एवं बाजार में मंदी के समय मजदूरी की दरों को स्थित करने में सहायता देना। इस दिशा में छठी योजना 1985-86, 1986-87 एवं 1987-88 में प्रगति को निम्न तालिका में दर्शाया गया है। मद छठी योजना 1985-86, 1986-87, 1987-88। नंबर एक, कुल परिव्यय करोड़ में 600, 606, 733.33, 725.00। नंबर दो, कुल प्रयोग करोड़ में 383.74, 435.07, 635.47, 350.15। नंबर तीन, रोजगार उत्पत्ति 10,00,000 कार्य दिवस। रोमन का नंबर एक लक्ष्य 300, 206, 236, 268 1984-85 में। रोमन का नंबर दो उपलब्धि 263, 238, 305, 194 1984-85 दिसंबर 1987 तक। वानिकी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए NREP एवं RLEGP के अधीन 25% राशि सामाजिक वानिकी के लिए नियत की गई है। 10% निर्माण कार्यों के रखरखाव के लिए रखी गई है। NREP एवं RLEGP के अधीन राज्यों संघ प्रदेशों को वार्षिक आवंटन 10% अनन्य रूप से अनुसूचित जातियों जनजातियों के लाभार्थ कार्यों के लिए रखा गया है। प्रत्येक प्रोग्राम के अधीन 6 करोड़ वार्षिक स्वच्छ शौचालयों के निर्माण हेतु प्रयोग किए जाने हैं। आवास इकाइयों के निर्माण सामाजिक वानिकी एवं अनुसूचित जनजातियों एवं जनजातियों के लिए आवंटित राशि को किसी अन्य कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इंदिरा आवास योजना के अधीन अनुसूचित जातियों जनजातियों एवं मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए नियत राशि की व्यवस्था की गई है। 1987-88 में यह राशि 125 करोड़ रुपए थी। 1.08 लाख मकानों के निर्माणों के लिए 1987-88 के वर्ष के लिए इस प्रोग्राम के अधीन लक्षित किया गया है। नंबर दो, वर्षा आधारित कृषि हेतु रणनीति, स्ट्रेटजी फॉर रेनफेड एग्रीकल्चर। 7वीं पंचवर्षीय योजना में योजना काल के दौरान कृषि की उपज में 4% तथा खाद्यान्नों की उपज में 3.7% वृद्धि की प्रत्याशा की गई है। इस योजना में एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो आरंभ किया गया है वह वर्षा आधारित क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसलों यथा बाजरा, दालें, तिलहन एवं कपास की उपज में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय पनढाल विकास प्रोग्राम। देश में कुल कृषिगत क्षेत्र का 72% वर्षा पर निर्भर है। राष्ट्रीय पनढाल विकास प्रोग्राम 16 राज्य जिनमें 99 जिले आते हैं क्रियान्वित किया जा रहा है, जहां जल संरक्षण, फसल काटने संबंधी प्रौद्योगिकी के बारे में निर्णायक परियोजनाएं पहले से ही चल रही हैं। 1987-88 के दौरान 15,173 सूक्ष्म पनढालों के लक्ष्य के लिए विरुद्ध दिसंबर 1987 तक सामूहिक उपलब्धि 14,979 थी। 1986-87 में इस प्रोग्राम द्वारा 5.32 लाख हेक्टेयर वर्षा आधारित भूमि को आच्छादित कर लिया गया था एवं 1987-88 में 5.41 लाख हेक्टेयर को आच्छादित कर लिए जाने का अनुमान था। पृष्ठ संख्या 507। योजना आयोग ने राज्यों को परामर्श दिया है कि राज्य योजनाओं का निर्माण करते समय दीर्घकालीन सूखा रणनीति के भाग रूप में निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान दिया जाए। रोमन का नंबर एक ऐसी सिंचाई परियोजना को प्राथमिकता देना जिनका सूखाग्रस्त क्षेत्रों को लाभ होगा। रोमन का नंबर दो, जल बचाने के उपायों यथा स्प्रिंकलर प्रणाली के प्रयोग को बढ़ावा। रोमन का नंबर तीन, वैज्ञानिक संगठनों यथा अंतरिक्ष विभाग की जल पुनरावृत्ति स्थानों का पता लगाने एवं अनुकूलों को खोलने की सहायता करना है। रोमन का नंबर चार, शुष्क भूमि कृषि पर अधिक अनुसंधान एवं ध्यान। रोमन का नंबर पाँच, सारा वर्ष जल प्रबंध जल संरक्षण विधि का प्रचार करना। सूखाग्रस्त क्षेत्र प्रोग्राम DAPD का उद्देश्य भूमि, जल, पशु एवं मानव संसाधनों के अनुकूलतम विकास द्वारा पर्यावरणीय संतुलन की पुनः स्थापना है, ताकि सूखे का प्रभाव कम हो एवं अल्प तथा सूक्ष्म पनढाल आधार पर समेकित क्षेत्र विकास हो सके। इस प्रोग्राम के अधीन 13 राज्यों के 70 जिलों में 511 खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। विभिन्न गतिविधियों यथा वानिकीकरण, भूमि संरक्षण, अल्प वर्षा जल संरक्षण, जल का सुदक्ष प्रयोग, शुष्क भूमि कृषि प्रौद्योगिकी का आरंभ एवं उपयुक्त कृषि आर्थिक अभ्यास को चलाया जा रहा है। प्रत्येक खंड को 15 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवंटित किए गए हैं, जो केंद्र एवं राज्यों द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाता है। नंबर तीन, सिंचाई जल बेहतर उपयोग, बेटर यूज ऑफ इरिगेशन वाटर। जल का अनुकूलतम प्रयोग भोजन एवं अन्य कृषि पदार्थों की आवश्यकताओं को पूरा करने की कुंजी है। सिंचाई जल प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। उत्पन्न एवं प्रयुक्त जल के मध्य अंतर को सुदक्ष प्रबंध द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में सभी संसाधनों से उत्पन्न एवं प्रयुक्त जल की मात्रा क्रमशः 67.5 मिलियन हेक्टेयर एवं 60.6 मिलियन हेक्टेयर थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में 13 मिलियन हेक्टेयर एवं 11 मिलियन हेक्टेयर भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचाई सुविधा के उत्पन्न एवं प्रयुक्त किए जाने का अनुमान है। 1985-86 एवं 1986-87 में कुल उत्पन्न शक्ति एवं प्रयुक्त क्रमशः 4.41 मिलियन हेक्टेयर एवं 3.50 मिलियन हेक्टेयर था। 1987-88 यह 2.3 मिलियन हेक्टेयर एवं 2.05 मिलियन हेक्टेयर थी। यह सूचित किया गया है कि आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश में उत्पन्न शक्ति एवं प्रयुक्त शक्ति के मध्य पर्याप्त अंतर है। कमान क्षेत्र विकास प्रोग्राम CADP का लक्ष्य उत्पन्न शक्ति एवं इसके प्रयोग के मध्य अंतर को भरना है। इस प्रोग्राम में इस समय 8 राज्यों एवं एक संघ प्रदेश में 132 परियोजनाएं, जिनका कुल कमान क्षेत्र 17.3 मिलियन हेक्टेयर सम्मिलित है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में 6.81 मिलियन हेक्टेयर के लिए नालियों के निर्माण, 1.82 मिलियन हेक्टेयर के लिए भूमि समतलीकरण एवं लगभग 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि के लिए वाराबंदी प्रणाली की व्यवस्था की गई है। उत्पन्न शक्ति को बेहतर प्रयोग हेतु जल प्रबंध प्रविधियों को उन्नत करने की आवश्यकता है। मिश्रित जल प्रयोग प्रोग्राम, जिनमें प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के कमान में छोटे इकाई साधनों के निर्माण की व्यवस्था होती है। सिंचाई के क्षेत्र में समेकित परियोजना नियोजन की दशा में पर्याप्त सहायक हो सकता है। वर्ष 1985-86 के दौरान 1.97 मिलियन हेक्टेयर नालियाँ, 0 से 39 मिलियन हेक्टेयर भूमि समतलीकरण एवं 2.4 मिलियन हेक्टेयर वाराबंदी पूर्ण हो गई थी। 1987-88 के लिए लक्ष्य 1.2 मिलियन हेक्टेयर भूमि नालियाँ, 0.51 मिलियन हेक्टेयर भूमि समतलीकरण तथा 1.68 मिलियन हेक्टेयर वाराबंदी थी। छोटी सिंचाई परियोजनाओं में भूमि जल शक्ति का शोषण एवं लघु भूतल जल योजनाएं सम्मिलित हैं। इन योजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से क्रियान्वित किया जाता है, जिसके लिए वित्तीय संस्थानों एवं अन्य संस्थानों यथा जनजातीय उप योजना IRDP, NREP, लघु एवं सीमांत कृषक पश्चिमी घाट प्रोग्राम आदि से पूरक सहायता प्राप्त होती है। वर्ष 1987-88 की योजना में चालू परियोजना के शीघ्र पूर्ण किए जाने पर अधिक बल दिया गया है। नई योजनाएं सूखाग्रस्त जनजाति एवं पिछड़े क्षेत्रों में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तक सीमित रखा गया। सभी राज्यों संघ प्रदेशों में लघु सिंचाई परियोजना की गणना करते हुए एक नई केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 100% केंद्रीय सहायता से आरंभ की गई है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की गतिविधियों को उत्तरी पूर्वी राज्यों के विकास एवं भूमि जल परीक्षण के विशेष संदर्भ में तीव्र बनाया गया है। नंबर 4, अच्छी फसलें बिगर हार्वेस्ट। हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उपज में 4% एवं खाद्यान्नों की उपज में 3.7% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोग्राम के प्रमुख प्रोग्राम हैं नंबर 1 विशेष चावल उत्पादन प्रोग्राम पूर्वी प्रदेश में, नंबर 2 राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना, नंबर 3 राष्ट्रीय पनढाल विकास प्रोग्राम वर्षा आधारित कृषि के लिए, नंबर 4 लघु एवं सीमांत कृषकों का विकास एवं नंबर 5 सामाजिक वानिकी। पूर्वी प्रदेश में विशेष चावल उत्पादन प्रोग्राम। पूर्वी प्रदेश असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में चावल उत्पादन की क्षमता एवं इसकी वास्तविक उपज में सभी प्रदेशों से अधिक अंतर है। अधिक उपज की इसकी क्षमता का शोषण करने के लिए विशेष चावल उत्पादन प्रोग्राम 430 खंडों में केंद्रीय प्रायोजित परियोजना के रूप में आरंभ किया गया है। राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना एवं प्रौद्योगिकी मिशन, नेशनल ऑयल सीड्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड टेक्नोलॉजी मिशंस ऑन ऑयल सीड्स, इस परियोजना के प्रमुख दल तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु जिला स्तरीय प्रोग्रामों को गहन बनाना है। इस प्रयोजन हेतु 7 राज्यों में 180 जिलों की पहचान की गई है, जिसमें 146 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित होगा। यह 50:50 के अनुपात पर केंद्रीय प्रायोजित परियोजना है। इस परियोजना के प्रमुख घटक हैं बीजों का उत्पादन, वितरण एवं भंडारण, लघु कीटों का वितरण, उर्वरकों के वितरण मार्गों को सशक्त बनाना, अधिक प्रभावी कृषि यंत्रीकरण एवं विपणन एवं मूल्य समर्थन, खाद्य तेलों एवं अखाद्य तेलों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस दिशा में अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी समर्थन प्रदान करने के लिए तिलहन उत्पादन प्रौद्योगिकी मिशन को मई 1986 में स्थापित किया गया। मिशन अपना ध्यान प्रमुख फसलों मूंगफली, अरंडी, बीज, सरसों, सोयाबीन, सूर्यमुखी, सनफ्लावर, अलसी, सेसम एवं नीगर पर केंद्रित रखता है। राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना, नेशनल पल्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत हैं एवं अधिकांश जनता के भोजन का आवश्यक अंग हैं। देश में दालों का उत्पादन 10 से 13 मिलियन टन की परिसीमा में स्थिर रहा है। दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत प्रमुख दालों यथा चना, अरहर, मटर, मूंग, उड़द, मसूर के उत्पादन के बारे में फसलवार एवं क्षेत्रवार फसलों पर बल दिया जाता है। प्रयास क्षेत्र को बढ़ाने पर उत्पादकता को अधिक करने का किया गया है। यह प्रोग्राम जून 1986 में 13 प्रमुख दाल उत्पादन राज्यों में आरंभ किया गया। बागवानी हॉर्टिकल्चर अनेक केंद्रीय राज्य स्कीमें फलों एवं सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु आरंभ की गई हैं। इस स्कीम के अधीन मुख्यतः वृक्षारोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण तथा उन्नत उत्पादन अभ्यासों का प्रदर्शन सम्मिलित है। फसलोत्तर क्रियाएं, पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस, इस प्रोग्राम के अंतर्गत आधुनिक भंडारण प्रोसेसिंग एवं विपणन हेतु सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडार निगम, राज्य भंडार निगम विशाल भंडार भवनों का निर्माण करते हैं तथा उनकी देखभाल करते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 10 मिलियन टन के लिए अतिरिक्त भंडारण सुविधा उत्पन्न करना है। पशुपालन एवं डेयरी विकास, एनिमल हस्बेंड्री एवं डेयरी डेवलपमेंट, पशुपालन प्रोग्राम का उद्देश्य दूध, अंडों, गोश्त, मांस, अन्न, ग्रामीण यातायात की आवश्यकता की पूर्ति करना है। विशेष पशु उत्पादन प्रोग्राम 21 राज्यों एवं 4 संघ प्रदेशों के 163 जिलों में इस समय चल रहा है, जिसके अंतर्गत लघु सीमांत कृषकों, कृषक श्रमिकों की संकर बछड़े पालन एवं भेड़, मुर्गी एवं सुअर उत्पादन इकाइयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। लाभार्थियों का 30% अनुसूचित जातियों, जनजातियों में होना चाहिए। मत्स्य पालन, फिशरीज, देश में मत्स्य कृषक विकास अभिकरणों का जाल बिछा हुआ है, जो मत्स्य बीज, उर्वरक, ऋण आदि की व्यवस्था करते हैं एवं प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। यह अभिकरण पोखरों के निर्माण एवं विकास हेतु सब्सिडी भी देते हैं।